नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सब इन दिनों पुराने नियम की पुस्तक में से भजन संहिता नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 2 उसके 2 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 2 अध्याय उसका 2 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। ध्यान दीजिए, पृथ्वी के राजा मिलकर, ये राजनेता हैं, हाकिम आपस में सम्मति करके, ये धर्म के अगुए हैं। आपके पास इस विद्रोह में केवल साधारण जनसमूह ही नहीं, संस्थान भी सहयोगी है। वे किस बात पर विद्रोह कर रहे हैं? वे किसके विरुद्ध हैं? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध। यहाँ इब्रानी भाषा में अभिषिक्त का अर्थ है मसीहा। परमेश्वर और मसीह के विरुद्ध एक वैश्विक अभियान चल रहा है। ध्यान दीजिए, इस अभियान का आरंभ कब हुआ? धर्मशास्त्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 4 में जब कलीसिया पर सताव का आरंभ हुआ, तब प्रेरित पत्रस और यूहन्ना को धमकी दी गई और वे कलीसिया का वृतांत सुनाते हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है। हमें यहाँ विचार करना है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं जानते कि वह स्वामी है। कुछ लोगों को तो पूरा विश्वास भी नहीं है कि वह परमेश्वर है, वे विमूढ़ हैं। आरंभिक कलीसिया को तो इस विषय में न तो किसी प्रकार का भ्रम था और न ही कोई संदेह था। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। यह आप स्पष्ट देखते हैं कि वे भजन 2 का स्मरण कर रहे हैं। और पद 26 में देखिए, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। अब देखिए पवित्र आत्मा क्या कहता है पद 27 में, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। देखा आपने, यह इस अभियान का आरंभ है। पवित्र आत्मा ने तो हमें पहले ही बता दिया था कि वर्षों पूर्व पिलातुस ने धर्म के गुरुओं और हेरोदेस के साथ यीशु को मृत्युदंड देने की सम्मति की थी। यह परमेश्वर और मसीह के विरोध में सम्मति है। यह वर्षों वरन सदियों से चला आ रहा है और इसका अंतिम विस्फोट परमेश्वर और मसीह के विरोध में विश्वव्यापी विद्रोह होगा। मेरे मित्रों, अब कोई मुझसे कहे, आप यह तो नहीं कह रहे हैं कि संसार इसी दिशा में अग्रसर है? मैं आपसे कहता हूं, ऐसा ही हो रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं, आपके विचार में क्या संसार सुधरता जा रहा है? मैं कहता हूं हाँ। अन्य जन आकर मुझसे कहते हैं, आपके विश्वास में संसार अधिकाधिक बुरा होता जा रहा है। मैं कहता हूं हाँ। अब आप कहेंगे, आप यह दोगली बात कैसे कर रहे हैं? जी नहीं, दोनों बातें ही सच हैं। मत्तयी सुसमाचार 13 अध्याय के 24 से 39 पद में यीशु ने जंगली बीज के दृष्टांत में यही तो कहा था। उसने कहा कि वह संसार में बीज बो रहा है, परंतु बैरी ने आकर वहां जंगली बीज डाल दिए। जब पौधे उग आए, तब सेवक जंगली पौधों को निकाल देना चाहते थे। मैं जब सेवा में आया था, तब मैंने भी यही करना चाहा। मैं जंगली पौधे उखाड़ने में बहुत अच्छा हूँ, परंतु मुझे शीघ्र ही ज्ञात हुआ कि हम जंगली पौधे उखाड़ने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। मुझे यह समझने में बहुत कष्ट उठाना पड़ा। यही कारण है कि मैं किसी को सुधारने का प्रयास नहीं करता हूँ। मुझे अपने आप के साथ ही अनेक समस्याएं हैं, अतः मैं दूसरों की इस विषय में चिंता नहीं करता हूँ। उनकी चिंता परमेश्वर करेगा। उसी ने कहा है कि गेहूं और जंगली पौधे को साथ साथ उगने अर्थात बढ़ने दो, वह समय आने पर उन्हें अलग अलग कर देगा। यह उसका काम है। आज अच्छा बीज डाला जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि आज सबसे अधिक बाइबल शिक्षा दी जा रही है? हम कुछ समय रेडियो प्रसारण पर घमंड करते हैं, परंतु हमारा रेडियो कार्यक्रम बहुत लंबे समय से परमेश्वर का वचन सुना रहा है। हमारे देश में अनेक रेडियो प्रसारण केंद्र हैं। वचन अनेक केंद्रों से प्रसारित किया जाता है, जैसे पहले नहीं था। गेहूं उग रहा है, परंतु मेरे भाइयों, जंगली बीज भी उग रहे हैं। बुराई भी फल रही है। आज परमेश्वर और मसीह के विरोध का विश्वास नहीं होता है। मैं अपने विरोध के आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं मानता। पर्दे के पीछे देखो, नास्तिकतावाद अपनी ऊंचाइयों पर है, चाहे हमारे यहाँ न हो। जी हाँ, नास्तिकवाद का विकास हो रहा है और यह आश्चर्य की बात है। आप निश्चय ही स्वीकार करेंगे कि आज मुख्य विचार नास्तिकतावाद ही है। निसंदेह पूर्व काल में भी ऐसा नहीं था। प्राचीन संसार अन्य जातियों के उस महान संसार में एक भी राष्ट्र नास्तिक नहीं था, एक भी नहीं। आप कहेंगे, मैं तो सोचता था कि उनमें कोई तो नास्तिक होगा नहीं। वे इसके विपरीत बहुदेववादी थे। वे अनेक देवताओं की उपासना करते थे। वे प्रकाशन के घाट पर थे। नूह एक ऐसे मनुष्य को जानता था जो आदम से परिचित था। जब आप इतना निकट हो तो आप परमेश्वर का इनकार कभी नहीं करेंगे। नूह के युग में संसार विद्रोह की आत्मा से पूर्ण था, परंतु उनमें एक भी नास्तिक नहीं था। 10 आज्ञाओं में एक भी नास्तिकतावाद या नास्तिकवाद विरोधी नहीं है। निश्चय ही 2 आज्ञाएं मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं। तू मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर मत मान। तू गढ़ी हुई मूर्ति या स्वर्ग या पृथ्वी के नीचे किसी का रूप या आकार न बनाना। देखिए, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 3 और 4 पद में उसने नास्तिकवाद के विषय कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उस युग में नास्तिक नहीं थे। दाऊद के युग में नास्तिक थे, अनेक नास्तिक थे। भजन संहिता 14:1 में दाऊद उन्हें मूर्ख कहता है। मूर्ख ने मन में कहा परमेश्वर नहीं है। इब्रानी भाषा में मूर्ख शब्द का अर्थ है पागल, अर्थात नास्तिक मनुष्य मूर्ख है, पागल है। वह लौकिक शिक्षा में वाचस्पति होगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मूर्ख है, पागल है। जो कहे कि परमेश्वर नहीं है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मेरे मित्रों, मैं पूरे मन से मानता हूं कि मसीह का विरोध है। समाजवादी राष्ट्र हो या लोकतांत्रिक राष्ट्र, अब कोई कहे मैं यीशु के बारे में बहुत चर्चा सुनता हूं, वह बहुत अद्भुत व्यक्ति है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मुक्त विचारवादियों का या इस संसार का यीशु कभी था ही नहीं? मुक्त विचारवादियों का यीशु और बाइबल का यीशु 2 अलग-अलग मनुष्य हैं। मुक्त विचार का यीशु तो कभी था ही नहीं। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। एक कलीसिया में प्रतिवेश में एक मुक्त विचारवादी की कलीसिया थी। मैं उसका बहुत सम्मान करता था, क्योंकि मेरी दृष्टि में मुक्त विचारकों में वही एक सत्यनिष्ठ मनुष्य था। उदाहरण के लिए, वह साफ साफ कहता था कि वह यीशु का जन्म कुंवारी से नहीं मानता है। यदि आप कुंवारी के गर्भवती होने पर विश्वास नहीं करते तो स्पष्ट कह दें, व्यर्थ की बातें न करें। उसका रेडियो पर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आता था। श्रोतागण, हम दोनों ही से प्रश्न पूछते थे कि हमारा विरोध बढ़े। प्रति वर्ष हम बड़े दिन के समय इस अनुष्ठान को पूरा किया करते थे। एक बार हमें भोज पर आमंत्रित किया गया और मेरे विचार में उन्होंने हमें जानबूझकर ऐसे बैठाया जो हम एक जगह पर हों। मैं वहां पहुंचकर बैठा ही था कि मैंने उसका नाम देखा और वह वहां आ भी गया। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, श्रीमान, क्या आप जानते हैं कि हमें अधिक घनिष्ठता में होना है, क्योंकि हम दोनों ही ईश्वर का प्रचार करते हैं। और वह मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा, क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप भी उसी यीशु का प्रचार करते हैं? ओह, क्या हम नहीं करते? मेरे विचार में नहीं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपका यीशु कुंवारी से जन्मा था? उसने कहा, कदापि नहीं। मैं तो जिस यीशु का प्रचार करता हूँ वह कुंवारी से जन्मा था। जिस यीशु का प्रचार आप करते हैं क्या वह आश्चर्य कर्म करता है? मैं आश्चर्य कर्मों में विश्वास नहीं करता, परंतु मेरे यीशु ने तो आश्चर्य कर्म किए थे। आप जिस यीशु का प्रचार करते हैं क्या वह संसार के पापों के निमित्त क्रूस पर मरा था? निश्चय ही वह क्रूस पर मरा, परंतु संसार के पापों के लिए नहीं। मैं जिस यीशु का प्रचार करता हूँ वह मनुष्य के पापों के लिए उसके स्थान पर मरा था। क्या आप यीशु के सदेह पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं? ओह, कदापि नहीं। तब तो स्पष्ट है कि आप और मैं एक ही यीशु का प्रचार नहीं करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे मित्रों, कि ये मुक्त विचारक हम रूढ़िवादियों को सुधार विरोधी कहते हैं, यह एक भयानक बात है। अतः मैंने उससे कहा, जिस यीशु का आप प्रचार करते हैं उसके प्रमाण कहाँ हैं? वह हंसा और टालते हुए बोला, हमारे पास नहीं है। मैंने कहा, क्या यह एक रोचक बात नहीं कि हमारे पास हमारे यीशु के प्रमाण हैं और आपके पास नहीं है, तो भी आप हमें सुधार विरोधी कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सुधार विरोधी कौन है। मेरे मित्रों, क्या मैं आपसे कह सकता हूँ, जिस यीशु में आज संसार विश्वास करता है वह तो कभी था ही नहीं। जिस यीशु का हम प्रचार करते हैं वही बाइबल का यीशु है और वही है जिसका संसार विरोध करता है। परमेश्वर और मसीह यीशु का आज उग्र विरोधी है। यह कैसे दिखाई देता है? ठीक वैसे ही जैसे उसने वर्णन किया था। सुनिए भजन में वे क्या कहते हैं। भजन संहिता 2:3 में लिखा है, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। परमेश्वर ने मनुष्य पर क्या बंधन डाले हैं? विवाह का एक बंधन। परमेश्वर ने मनुष्य के कल्याण के लिए विवाह रचा था। अब आप चाहे मसीह विश्वासी हो या न हो, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए विवाह की व्यवस्था की है। आज मनुष्य विवाह के बंधन से मुक्त होना चाहता है, वरन बंधन को तोड़ भी देता है। मैं आज के आधुनिक विचारों का नहीं हूँ जो परमेश्वर मनुष्य और परमेश्वर के वचन के संबंध में प्रचलित है। अतः जब मैं किसी युवा अधिवेशन में उपस्थित था तब हमारे प्रश्नोत्तर सत्र में एक प्रिय बालिका ने कहा, सर यदि एक युवा पीढ़ी परस्पर प्रेम में बंधे हैं तो उन्हें विवाह करने की क्या आवश्यकता है? वे एक साथ जीवन क्यों नहीं आरम्भ कर देते? परमेश्वर ने विवाह की व्यवस्था की है और वह चाहता है कि हम विवाह का पालन करें, परंतु वे कहते हैं आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें। हम आगे देखते हैं, और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। 10 आज्ञाएं उसकी रस्सियां हैं। उन्हें न मानना हमारी भूल है, उनके पालन से उद्धार नहीं है। मैंने करके भी देखा है, परंतु यह सच है कि परमेश्वर ने ये आज्ञाएं दी हैं और वे मनुष्य की भलाई के लिए हैं, और आज हमने वे रस्सियां उतार फेंकी हैं, और इसका परिणाम है अपराध और अव्यवस्था। अपराध का दंड नहीं रहा है। यदि कानून अंधा ना होता तो अनेक जाने बलि नहीं चढ़ती। देखा आपने, हम ऐसे युग में वास करते हैं अर्थात रहते हैं जिसका विचार है आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अपनी मन मर्जी से जीना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है कि इस प्रकार हमारा जीवन सफल नहीं होगा। हम में पुराना स्वभाव है जिसका हमें दमन करना है, परंतु मनुष्य आज सब बंधन तोड़ना चाहता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज संसार को देखना परेशानी उत्पन्न करता है। राजनीति में अव्यवस्था है, नैतिकता में भ्रष्टाचार है, आत्मिकता में सांसारिक समझौता और उदासीनता है, परंतु सामाजिकता में सुविधा है। आज का समृद्ध समाज सब बातों में सुविधा चाहता है, ऐसी सुविधा जो पहले नहीं थी। मैं आपसे सच कहता हूँ, यह एक चिंता का विषय है और मैं इस विषय में चिंतित हूँ। आइए आगे देखें, पिता परमेश्वर पर कैमरा। अब प्रश्न यह उठता है, परमेश्वर इस विषय में क्या सोचता है? भजन संहिता 2:4 में लिखा है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। यह कैसी हंसी है। मैं आपको आरंभ में ही कह देता हूं कि यह विनोदी हंसी नहीं है। मुझे आप गलत न समझे, बाइबल में मनोविनोद पर्याप्त मात्रा में है। शैतान ने मनुष्यों के मन में यह विचार उपजाकर सफलता प्राप्त कर ली है कि आराधना में जाना कष्टकारी है। आज का यह मानना है कि आराधना में मनोरंजन नहीं है। मेरे विचार में बाइबल विनोदपूर्ण है। जो हमारे साथ बाइबल अध्ययन करते हैं वे जानते हैं कि हमें बड़ा आनंद आता है। मेरी सेवकाई में एक कुंवारी लड़की थी जो कहती थी कि बाइबल में विनोद नहीं है। जब एक बार मैंने अपने संदेश में किसी विनोदी घटना का संदर्भ दिया तब उसने अपनी पतली सी उंगली हिलाकर कहा, सर आप वचन के प्रति श्रद्धा नहीं निभा रहे हैं। मैंने कहा, आप नहीं सोचती कि ऐसा हो? अब तो वह प्रभु के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह वहां खूब हंसती होगी, क्योंकि यहां तो उसे ऐसा अवसर नहीं मिला था। आज भी ऐसे अनेक विश्वासी हैं। मेरे मित्रों, उसके साथ एक दिन उपस्थित होना वास्तव में आनंद विभोर होने का समय होगा। हमें बड़ा ही आनंद का समय प्राप्त होगा, अमोद प्रबोध का समय होगा। मैं तो उस दिन की बात जोह रहा हूं। अतः परमेश्वर हास्य विनोदी है, उसके वचन में विनोद है। लिखा है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। यह ठिठोली की हंसी नहीं है। तो फिर यह हंसी कैसी है? परमेश्वर के दृष्टिकोण से इस पर विचार करें। यहां एक अकिंचन या दुष्ट मनुष्य स्वर्ग की ओर घूंसा तान कर कह रहा है, बाहर आ और मुझसे लड़, मैं तेरे विरोध खड़ा हूं। परमेश्वर इस दुष्ट प्राणी को देखकर हंसता है। यह मूर्खता का व्यवहार कैसी असंगत बात है। परमेश्वर नीचे देख करके हंसता है। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, उनका ठट्ठा करेगा। मेरे मित्रों, यह सर्वथा मूर्खता है। दुष्ट मानव परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो रहा है परंतु टिक नहीं पाएगा। मुसोलिनी, स्टालिन आदि खूब प्रसिद्ध हुए, सब समाप्त हो गए। दुष्ट मानव यहां जीवन के मंच पर अपनी पल भर की भूमिका निभाता है और फिर उसका काम समाप्त हो जाता है। परमेश्वर का विरोध करना कैसी मूर्खता की बात है। भजन संहिता 2:5 में हम पढ़ते हैं, तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। यह पृथ्वी पर पड़ने वाला दंड है। परमेश्वर की गतिविधियों पर मनुष्य के विरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा? परमेश्वर तो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ता रहेगा। दुष्ट मानव यहां जो भी करे, ना तो परमेश्वर का मार्ग बदल सकता है और न ही उसे विवश कर सकता है और न ही उसे विचार बदलने पर बाध्य कर सकता है। आप यह ना सोचे कि परमेश्वर सुबह का समाचार पढ़कर आश्चर्य करेगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं जो वह पहले से ना जानता हो। वह तो अपने उद्देश्य की पूर्ति निमित्त बढ़ता ही जाता है। मेरे विचार में इस संसार में उसके दो उद्देश्य हैं, एक स्वर्गिक उद्देश्य और एक सांसारिक उद्देश्य। इस समय वह अपने स्वर्गीय उद्देश्य पर क्रियाशील है। इब्रानियों की पुस्तक का लेखक इसकी चर्चा करता है, इब्रानियों की पत्री 2:10 में, वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। जी हाँ, आज परमेश्वर इस संसार को बुला रहा है कि उसके नाम के लिए एक मानव जाति तैयार हो। उसका आज का उद्देश्य यही है। परंतु परमेश्वर का एक और उद्देश्य है जो यहाँ दिया गया है। आइए हम पढ़ें भजन संहिता 2:6 में, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। परमेश्वर आज अविचल आगे बढ़ रहा है। प्रभु यीशु के विराजमान होने के लिए इस पृथ्वी पर उस सिंहासन की स्थापना के लिए संसार से समझौता किए बिना वह अग्रसर है। मैं मनुष्यों को कहते हुए सुनता हूँ, यदि प्रभु का आगमन विलंब हो तो यह विचार कहाँ से आया? वह तो कभी किसी बात में विलंब नहीं करता है। वह तो अपने निर्धारित समय पर आ जाएगा। यह उसकी समय सारणी है, मेरी नहीं। अतः मैं नहीं जानता कि वह कब आएगा। वह तो समय पर ही चल रहा है। उसे कोई रोक भी नहीं सकता। कोई बात ऐसी नहीं जो उसके उद्देश्यों में उसे रोके। मेरे प्रियो, हम देखते हैं पुत्र परमेश्वर पर कैमरा। उस स्वर्ग का कैमरा परमेश्वर के दाहिने हाथ उपस्थित पुत्र परमेश्वर पर केंद्रित होता है। पुत्र परमेश्वर कहता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। बाइबल का अध्ययन करने वाले जानते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर की आज्ञाओं की घोषणा करता है। आइए हम पढ़ें भजन संहिता 2 अध्याय उसके 7 पद में, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। जेहवाज विटनेस समुदाय इस पद का अधिक उपयोग करते हैं। काश वे इसे अधिक सुनकर इसका अर्थ समझें। इससे उन्हें यह समझने में सहायता मिलेगी कि यह पद प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित नहीं है। वे इसे तब ही समझ पाएंगे जब वे नए नियम को पढ़ें और पवित्र आत्मा का उसकी व्याख्या करने दें। यह पद प्रेरित पौलुस द्वारा भी अंताकिया के पिसिदिया में प्रचार हेतु काम में लिया गया था, जो मेरे विचार में यीशु के पुनरुत्थान का एक महान उपदेश था। देखिए प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 33 पद में, परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। मेरे मित्रों, दूसरा भजन यीशु के जन्म के विषय में नहीं है। वह ऐसे नहीं जन्मा था कि उसका कोई आरंभ माना जाए। यह तो उसके पुनरुत्थान के संबंध में कहा गया है। यीशु यूसुफ की कब्र से उत्पन्न हुआ। यीशु परमेश्वर का अनादि पुत्र है और परमेश्वर उसका अनादि पिता है। जिसका अनादि पिता न हो उसका अनादि पुत्र नहीं हो सकता। अनादि काल से ही वे दोनों अनंत हैं। त्रिएकत्व में यही उनका स्थान है। इसका अर्थ मानवीय जन्म से नहीं है, परंतु इसका अभिप्राय मृतकों में से जी उठने से है, अर्थात पुनरुत्थान से। मुझे लगता है कि जेहोवाज विटनेस समुदाय ने यह नहीं सुना, परंतु यदि वे नए नियम में निष्ठापूर्वक खोज करें तो शीघ्र ही पता चल जाएगा कि यीशु एक प्राणी मात्र नहीं था, वह देव पुत्र था, वह ईश्वर मानव था। भजन संहिता 2 इस विचार की पुष्टि करता है। पिता परमेश्वर आगे कहता है भजन 2 उसके 8 पद में, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। इस संसार का राजदंड कीलों से छिदे हाथों के मनुष्य के हाथ में होगा, वही है जो अब राज करने वाला है। यह पद प्रायः सेवकों की सभाओं में मुख्य पद रखा जाता है। मुझे जहां तक स्मरण है कि मैंने एक दर्जन से भी अधिक सेवकों के संबंध में उपदेश इस पद पर सुने हैं, परंतु सच तो यह है कि यह पद सेवकों की सभाओं के लिए नहीं है। इसका मिशन, इसका उद्देश्य सेवा से कोई संबंध नहीं है। मैं जब बाइबल अध्ययन का विद्यार्थी था तब मैंने एक स्नातक से इस पद पर प्रवचन सुना था। मैंने उस समय बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया, अब नहीं करता हूं। मैं उसके प्रवचन के बाद उसके पास गया और कहा, श्रीमान जी आपने अगला पद क्यों छोड़ दिया? उसने ऐसा दिखाया कि मानो मुझे सुना ही नहीं और किसी और से बातें करने लगा, जबकि मुझे पूरा विश्वास है कि उसने सुन लिया था। मैंने फिर उससे कहा, श्रीमान जी आपने अगला पद क्यों छोड़ दिया? इस बार उसने मुझे पूर्ण रूप से अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। मुझे उससे दूर हो जाना था, परंतु मैं चलकर उसके सामने गया और वही बात दोहराई, श्रीमान जी आपने अगला पद क्यों छोड़ दिया? उसने मुझे घूर कर कहा, क्योंकि वह पद मिशनरी संदेश को नष्ट कर देता है। निश्चय ही ऐसा ही था। अब अगला पद हम देखें, भजन संहिता 2 उसके 9 में लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकना चूर कर डालेगा। क्या आपके विचार में यह परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार है जिसका हम प्रचार करते हैं? कदापि नहीं। इस पद का संबंध मसीह के प्रथम आगमन से नहीं है, यह उसके दूसरे आगमन से संबंधित है, जब वह पृथ्वी पर न्याय करेगा। उसका दूसरा आगमन ऐसा ही होगा, वह पृथ्वी का न्याय करेगा। उसने मुझे क्षमा मांगने को नहीं कहा है, इसलिए मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। वह कहता है कि वह इस छोटे से गृह पर आकर विद्रोह को कुचल देगा, वह उन्हें लोहे के डंडे से चूर चूर कर देगा। आपको यह बात अच्छी नहीं लगेगी, आपको उसकी बात मानना होगा। उसने कहा है तो वह ऐसा ही करेगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या उसे वैसा ही करना चाहिए जैसा हमारे राजनेता सुझाते हैं? अब मान लीजिए कि यीशु जब दूसरी बार आएगा तो जैसा वह 2012 वर्ष पूर्व था, एक गलीली पुरुष, बढ़ई का पुत्र, दीन यीशु वह जाकर कम्युनिस्ट देश में कहे, मैं यीशु हूं और यहाँ की सत्ता संभालने आया हूं, तो क्या वे कहेंगे, ओह आइए, हमें तो आपकी ही प्रतीक्षा थी? जी नहीं, वे उसे गोली मार देंगे। मेरे मित्रों, यदि वह रूस में आए तो वहां कैसे राज करेगा? उसे लोहे के डंडे से उन्हें तोड़ना होगा। क्या वह ऐसा नहीं करेगा? स्पष्ट है, वह ऐसा ही करेगा। अब मान लीजिए कि वह फ्रांस जाए तो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। रोम में एक बार भाषण चल रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि वह सत्ता हाथ में लेना चाहता था। अब यदि यीशु वेटिकन के द्वार पर दस्तखत दे और कहे कि वह राज करने आया है, तो वहां चोगा पहने एक पादरी आएगा और कहेगा, तू समय से पहले आ गया है, इस समय मेरे पादरियों में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई है, परंतु मैं उसे संभाल लूंगा, तेरी आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार में वे उसकी उपस्थिति वहां नहीं चाहेंगे। यदि वह हमारे देश में आकर कहे, मैं यहाँ राज करने आया हूँ, तो हम कहेंगे, अभी चुनाव का समय है, यदि तुम्हारे पास टिकट है तो चुनाव लड़ लो। वे उसे वोट भी नहीं देंगे। यदि वह वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में जाकर कहे, मैं आ गया हूँ, क्या वे उसे स्वीकार करेंगे? वे उसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब वह दूसरी बार आएगा तो ठीक वैसे ही आएगा जैसे परमेश्वर ने कहा था, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू उन्हें कुम्हार के बर्तन की नाई चकनाचूर कर डालेगा। जब वह दूसरी बार आएगा तब वह विद्रोह का दमन करने की इच्छा से आएगा। ओह मेरे मित्रों, यह नकली भावुकता का विचार है कि वह न्याय नहीं करेगा, व्यर्थ है। हम दंड की ओर अग्रसर संसार में हैं और परमेश्वर अवश्य ही इसका दंड देगा। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस भजन के अध्ययन से आप अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कृपया अगले अध्ययन में भी अवश्य ही परमेश्वर के वचन को सुने, जिसमें हम देखेंगे पवित्र आत्मा पर कैमरा। आप अपना ध्यान रखें, प्रभु की संगति में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे, प्यार ही प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे।
ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे, प्यार ही प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे।
मर के जी उठे वो अपनी यादें छोड़ गए, छोड़ गए।